بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے طالبان کے ساتھ حکومت پاکستان کے مذاکرات، امید اور اندیشے۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند برسوں سے پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور دہشت گردی کی یہ وارداتیں کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا اس سے متعلق اور وابستہ جو گروہ اور تنظیم ہیں وہی انجام دے رہی ہیں۔ ان دہشت گردی کی لپیٹ میں کبھی فوجی مراکز آتے ہیں، کبھی پولیس کے مراکز، عام شہری، مساجد، امام بارگاہ۔ غرض کی معاشرے کا کوئی بھی طبقہ دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہے، اور ہر کس و ناکس اب یہی کہنے پر مجبور ہے کہ جیسے بھی ہو پاکستان کو دہشت گردی کی اس لعنت سے نجات دلائی جائے۔ مختلف فارمولے، مختلف منصوبے اور مختلف باتیں، تجاویز سامنے آئیں۔ چنانچہ پچھلے دنوں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں اے پی سی منعقد ہوئی، جس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پہلے طالبان سے مذاکرات کیے جائیں۔ اس کے چند دنوں بعد، ابھی چند روز قبل، ٹی وی پر ایک مذاکرہ یا مناظرہ ہوا جس میں مختلف جماعتوں کے نمائندے اور صحافی اور سینئر دانشور سبھی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوں تو پھر ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ اس بات پر سب کا اتفاق تھا۔ دراصل گوش و کنار سے یہ بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ حکومت اور مذاکرات کے درمیان قاعدہ تو نہیں، لیکن مذاکرات تو شروع ہو چکے ہیں، لیکن طالبان کی طرف سے اس کی تردید کی جا رہی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی مذاکراتی عمل شروع نہیں ہوا ہے۔ طالبان نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت کے جس نے بقول طالبان کے جنگ خود شروع کی ہے، اگر جنگ بند کرنا چاہتی ہے تو پہلے وہ جنگ بندی کا اعلان کرے، وہ طالبان کے قیدیوں کو رہا کرے اور قبائلی علاقوں سے فوج کو واپس بلائے۔ جب طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اسی دوران قبائلی علاقے اپردیر میں پاکستان کے ایک میجر جنرل اور ایک کرنل اور ایک لانس نائک کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی ذمہ داری بھی طالبان نے قبول کی۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان عناصر کی طرف سے کیا گیا جو ان مذاکرات کے مخالف ہیں، لیکن جب طالبان یہ کہہ دیں کہ ان حملوں کی ذمہ داری یا اس حملے کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں، تو پھر اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہ جاتی کہ یہ حملہ خود طالبان نے ہی کیا ہے۔ بہرحال اس وقت امید بھی ہے اور اندیشہ بھی کہ آیا یہ مذاکرات انجام پائیں گے، یا اگر مذاکرات انجام پا گئے تو کتنے کامیاب ہوں گے، اور موجودہ صورتحال میں حکومت کے سامنے کیا چیلنج ہے، اور طالبان کس طرح سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کے تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور اب سیدھے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کی سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی محترمہ، ایک ایسے وقت جب پاکستان میں طالبان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کی باتیں زور و شور سے جاری ہے، وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، لیکن طالبان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی بھی نمائندہ ہم سے مذاکرات نہیں کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا واقعی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، یا جیسا کہ طالبان کہنا ہے کہ مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے؟
شکریہ بہت۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، وزیر داخلہ کی جانب سے بھی ایک بڑا واضح پیغام آیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب اے پی سی کی گئی تو اس سے پہلے کچھ ایسے معاملات طے کر لیے گئے، اور یقیناً اس میں پیش رفت کی جو ہے عندیہ دیا گیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مذاکرات کا آغاز جو ہے براہ راست نہیں ہم کہہ سکتے، लेकिन एक इब्तदा जो है वो यकीनन किसी सतह पे ज़रूर है, इनडायरेक्ट कह लीजिए या जिस तरह डिप्लोमेसी टू की बातें होती हैं या इस तरह की ट्रैक टू की बातें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई आगाज़ तो यकीनन हो चुका है, और अब बात सारी ये है कि क्या उसमें पाकिस्तान का एक या हुकूमत का किरदार क्या है, तालिबान का किरदार क्या है, ये एक बहुत ज़्यादा संजीदा बात है। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त हर शख्स ये चाहता है, तमाम सियासी जमातें ये चाहती हैं कि अमन होना चाहिए, क्योंकि एक तवील अरसे की जो 11-12 साल की जंग है वो हमने देखी है, हमारे शहरों के अंदर ये जंग लड़ी गई है, उसमें बेशुमार जो है बेगुनाह लोग हमारे मारे गए हैं, जो इमलाक का नुकसान है वो अलग है, लेकिन इंसानी जानों की जो हलाकतें हैं वो ज़ाहिर है कि 50,000 से तजावज़ कर चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अमन की ख्वाहिश जो है वो तकरीबन हर जगह है, लेकिन इसी के साथ मैं ये देखती हूँ कि दूसरी जानिब हमें वो इशारे नहीं मिलते। उसी बुनियाद पे आपको पता है कि जनरल कियानी को ये कहना पड़ा कि अगर वो समझते हैं कि मुज़ाकरात से पहले कोई ऐसे मामलात या वो अपनी ऐसी शरायत रखते हैं तो वो ज़ाहिर है कि तस्लीम नहीं की जाएंगी। तो ये एक जो इस वक्त वाज़े पैगाम आर्मी चीफ की जानिब से आया है, अस्करी क़यादत की जानिब से आया है, उसने एक मरतबा फिर थोड़ी सी तश्वीश भी पैदा कर दी है। ख़ास तौर पे मैं ये समझती हूँ कि जब कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें आर्मी चीफ भी शामिल थे, उसमें ISI के चीफ भी शामिल थे, लेकिन जनरल कियानी को अभी ये क्यों कहना पड़ा और क्या पीछे सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि उसने थोड़ा सा इशारा ये दे दिया है कि हुकूमत और आर्मी जो है शायद वो एक पेज पे नहीं है, ख़ास तौर पे जिस तरह बात की जाती है कि परदीर में अफवाज के इनखला के हवाले से बात की जाती है या तमाम उनकी रहाई की बात की जाती है जो उनके जो तालिबान है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो शराइत है, शराइत पे मुज़ाकरात का आगाज़ ज़रा मुश्किल हो जाता है। हमेशा शराइत ये होती है कि पहले एक अमन का पैगाम दिया जाए, लेकिन अमन का पैगाम अभी आपने देखा कि चंद दिन पहले जनरल नियाज़ी की जो जिस तरह उनको हलाक कर दिया गया या उनके दूसरे साथी थे वो भी वहाँ शहीद हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मामलात जो हैं इतने आसान नहीं हैं। ख्वाहिश होना अलग बात है, यकीनन हुकूमत की ख्वाहिश है, APC की ख्वाहिश थी, और उस वक्त जब हम ये देखते हैं तो एक पेज पे हमें अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत दिखाई दी थी, लेकिन सियासी क़यादत के APC के बाद जनरल कियानी की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसने थोड़ी सी तशवीश ज़रूर पैदा कर दी है। बात यह है कि पाकिस्तान में जब हम तालिबान की बात करते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त अमन अमान की जो सूरत हाल है या तालिबान की जो सूरत हाल है, कोई एक ग्रुप नहीं है। अभी चंद दिन पहले जो एक तफसीलात आई हैं, जो कालादम तंजीमों की बात की जाती थी, उनकी तादाद जो है अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब तो एक तकरीबन 100 के करीब जो है वो तंजीमें कही जाती हैं जो कालादम है, या उसकी तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है, या वो तंजीमें जिनको कालादम करार दिया गया वो दूसरे नामों के साथ आगे आ रही हैं। तो पाकिस्तान में कोई ये पाकिस्तानी तालिबान जो बात की जाती है या किसी एक फरीक की बात की जाती है, मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि हम ये सोचें कि अगर जो इस वक्त फ़ैसला कर लिया गया है या इत्तफाक कर लिया गया है कि इसमें मुज़ाकरात होने चाहिए। अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से कुछ ग्रुप से ताल्लुक ज़रूर किया गया है, कुछ आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया पे कुछ एकदम अचानक ऐसे चेहरे सामने आने लगे हैं जो तालिबान की कुछ उनकी हमायत भी करते दिखाई दे रहे हैं, उनकी ऐसे लगता है कि जैसे उनसे उनके ताल्लुकात हैं। तो ये एक गंभीर सी सूरत हाल है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को हर दूसरे उसके ऑप्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मुज़ाकरात पाकिस्तान ने पहले भी किए, स्वात में हमने ये देखा, मालाकंड में फिर एक दफ़ा जो ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है, और जिस तरह भी आपने रिपोर्ट में भी कहा, पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से बहुत वाज़े पैगाम जो है वो दिया जा रहा है, अमन के क़याम के हवाले से दिया जा रहा है, कैदी रहा किए गए आज जो उमर बरादरान हैं उनको भी रहा किया गया है, और कुछ और भी ऐसी इतलात हैं कि जो बहुत अहम उनके कोई रहनुमा है उनको भी जो है रहा कर दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि क्या सिर्फ एक तालिबान का ग्रुप है जिसको पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है वही पाकिस्तान में सरगर्म है या कुछ और भी ताकतें हैं?
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में।
मुज़ाकरात का आगाज़ यकीनन खुशाइंद है, होना चाहिए, और हर शख्स ये समझ रहा है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन ये कोई इतनी आसान सूरत हाल नहीं है कि हम इसको फौरी तौर पर
जी मोहतरमा मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में
चले जाएंगे, और सामने हमें कोई ऐसी दूसरी जानिब से भी हमें कोई एक ऐसा ही जेस्टर मिलेगा जिस तरह का हुकूमत की
बहुत
जानिब
शुक्रिया
से दिखाई
आपका
दे रहा है।
जी, बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं कराची स्टूडियो जहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर और सरकर्दा सहाफ़ी व तज़ निगार जनाब आगा मसूद हुसैन साहब। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जी
वालेकुम सलाम।
जी आगा साहब, आपकी आवाज़ मुझ तक थोड़ी सी कम पहुंच रही है। बहरहाल कोशिश होगी कि बेहतर तरीके से मैं भी और मेरे नाज़रीन भी आपकी आवाज़ सुन सकें। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसा कि अभी मोहतरमा फौज
नहीं, आप बता, आप बताएं, अब आ रही है
कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश तो सबकी है, तो क्या
अब आ रही है
मुज़ाकरात की ख्वाहिश? आप ये समझ रहे हैं कि अमली शक्ल अख्तियार कर लेगी या अमली शक्ल अख्तियार कर चुकी है, एक, और दूसरे अगर अमली शक्ल अख्तियार कर जाए मुज़ाकरात हों तो कितनी कामयाबी के इम्कान हैं?
मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारी बहन फौजिया साहिबा ने जो बातें की हैं और उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो सही नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए, तालिबान जो हकीमुल्ला महसूद के सरबराही में जो मजलिस शूरा का इजलास हुआ था उसमें 70 ग्रुप्स जो थे वो शामिल थे, और 70 ग्रुप्स जो थे उन्होंने अपनी अपनी राय दी, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान की हुकूमत को और अस्करी क्यादत को ये पैगाम दिया जाए कि पहले वो फाटा से अपनी जो है ना मौजूदगी को ख़त्म करें, और दूसरा ये कि हमारी जो जो कैदी हैं उसको रहा करें। तो जाहिर है कि ये जो शरायत वो पेश कर रहे हैं वो उससे तो मतलब ये कि बात चलेगी नहीं, और मैं नहीं समझता कि अस्करी क्यादत या सियासी क्यादत इसको तस्लीम करेंगे। दूसरी बात ये कि जो 70 ग्रुप हैं तो इसके अंदर मैंने आपसे पहले भी बताया था कि गार्जियन को जो इंटरव्यू दिया था इमरान खान ने, उन्होंने कहा था कि मुझे जहाँ तक मालूम है 35 ग्रुप हैं जिसके अंदर सियासी और नजरियाती कम है बल्कि क्रिमिनल्स ज्यादा हैं, जराइम पेशा लोग हैं। तो जब 70 ग्रुप जो बैठते हैं हकीमुल्ला महसूद के सरबराही में, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि इनका सबका जो है ना सोच होगी, इनकी फिक्र एक होगी? बल्कि मैं ही समझता हूँ कि बातचीत तो बिल्कुल शुरू हो चुकी है और उन ग्रुप से हो चुकी है कि जो सियासी तौर पर मतलब समझते हैं कि सूरत हाल क्या है, और वो चाहते भी हैं क्योंकि उनको फाटा के अवाम का भी प्रेशर है, तो वो तो नजरियाती लोग हैं। लेकिन जहाँ तक ये कहना कि सारे ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान की क्यादत से अस्करी क्यादत से बातचीत करने को तैयार हैं, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ बड़े 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 वसूख से, क्योंकि हमारा वहाँ पर आना जाना रहा है एक ज़माने में जबकि सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं थी, ये क्रिमिनल्स लोग हैं और इनको बाहर से पैसे मिलते हैं, एक आलमी साम्राज्य का अपना रोल है पाकिस्तान के अंदर और उनके लोग जहाँ पर मौजूद हैं, और वही मतलब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से बातचीत आगे ना बढ़े। मैं आपको एक हवाला देता हूँ, एक बहुत बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं रॉब सिरिल ने अपने एक मजमून लिखा है इसमें वाशिंगटन पोस्ट में, और उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान को तो तालिबान से बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये तालिबान जो हैं ये हमारे बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में नेटो की और अमरीकी फोर्सेस को मार रहे हैं, हालांकि हकीकत ये बिल्कुल इसके बरक्स है, जो भी जंग हो रही है वो तो काबिज़ फौज के खिलाफ तालिबान अफगान तालिबान कर रहे हैं, तो एक किस्म का कन्फ्यूजन कर रहा है। लेकिन जहाँ तक चौधरी निसार साहब का बयान है, और ये बयान मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि ये बातचीत का जो है पसे पर्दा जो है वो आगाज हो चुका है, और दूसरी बात यह कि कियानी साहब और अस्करी क्यादत जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक दूसरे के दूसरी समत में जाने के लिए। कियानी साहब ने जब जनरल न्याजी को शहीद किया और एक लेफ्टिनेंट कर्नल को शहीद किया, एक लाइन स्नाइपर को शहीद किया, तो उनका एक बड़ा वाज बयान आया, उन्होंने कहा कि देखिए हमें हम बातचीत करना चाहते हैं, अमन को एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की फौज की अहलियत या क्यादत जो है वो इस बात की वो नहीं है कि मुकाबला ना कर सके, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बात की गम्माज हैं कि पाकिस्तान की जो फौजी और अस्करी क्यादत है वो एक ही पेज पे है।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। आगा साहब आपकी खिदमत में चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं आगा मसूद हुसैन, आगा मखसूस सिद्दीकी साहब, डॉक्टर मखसूस सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
सिद्दीकी साहब, इस वक्त बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तालिबान अपनी शरायत पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत चाहती है हमसे मुज़ाकरात करना, उनके जुमले हैं, तो उसे चाहिए कि पहले वो जंग बंद करे, चूँकि जंग खुद हुकूमत ने शुरू की, उसे चाहिए कि हमारे तमाम कैदियों को रिहा करे, और उसे चाहिए कि फ़ौज हमारे इलाकों से वापस बुलाए। हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई शर्त आए दिन नहीं की गई, मुज़ाकरात की बात हुकूमत की तरफ से पेश करना یہ حکومت کے جذبہ خیر سگالی کا پتہ دیتا ہے، یا جیسا کہ بعض عناصر یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک طرح سے ایک کمزوری کا شکار ہے طالبان کے مقابلے میں، کیا صحیح ہے؟
دیکھیے، یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے جو طالبان کے خلاف جنگ کی ہے، یا وزیرستان میں یا فاٹا ایریا میں جو آج سے 7-8-10 سال پہلے اس امریکہ کے کہنے امریکہ کے حکم کی گئی ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے خطے میں ہے وہی امریکہ کی فوجوں کی موجودگی ہے۔ جب تک کہ امریکی فوجی یہاں پہ رہیں گے یا نیٹو فوجی رہیں گے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی مذاکرات جو ہیں یہ کسی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ امریکی فوجیوں کو یہاں سے پاکستان کو بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے اور افغانستان کو بھی اور سب کو کہ مکمل طور پہ امریکی فوجی اور امریکی جاسوس جو ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں وہ یہاں سے جائیں۔ جب تک یہاں موجود ہوں گے یہ اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، ابھی ہم نے 60-70 گروہوں کی بات کی، جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے اس میں بہت سارے گروہ ایسے ہیں جن کو ڈائریکٹلی یا امریکہ کے ایجنٹس مالی اور جنگی اور اسلحے سے امداد دے رہے ہیں، وہ آپس میں ہم لوگوں کو لڑانے کے لیے۔ یہ امریکہ کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے۔ حکومت پاکستان کی کمزوری بالکل نہیں ہے کہ وہ جو ہے مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں، کیونکہ آخر میں مذاکرات سے ہی یہ بات حل ہونی ہے، لیکن صرف مذاکرات سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ تو یہ ہوگا، اگر میرا مشورہ پاکستان حکومت سنیں، کہ ان کو اپنی کوئی بھی ڈیمانڈ شروع میں طالبان کو نہیں دینی چاہیے۔ وہ ابھی پچھلے سال سے ابھی ایک سال کے اندر 30,000 طالبان کے اونچے جو کارکن تھے ان کو رہا کیا گیا پاکستان میں، اور ابھی جیسے ہم نے سنا کہ یہ ان کے ملا برادر کو بھی رہا کر دیا گیا ہے، تو یہ سب جو ہیں ایک طرح کا پازیٹیو جیسچر ہے، اور اس سے افغانستان کی حکومت نے بھی یہ پاکستان سے اس بات کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ان لوگوں کو رہا کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ ان کے بھی مذاکرات شروع ہوں۔ تو یہ بات کہنا کہ طالبان اپنے ہتھیار ڈال دیں یا اور جو 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 ان کے جو پاکستان کی فوج کے خلاف جنگ نہ کریں، یہ تو بالکل ہی ایک سوال ہی نہیں پیدا ہونے کا۔ اور یہ جو چونکہ اتنے زیادہ گروہ شامل ہیں اس میں، بیت اللہ مسعود ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کوئی ان کے اوپر اتنا دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ سارے کے سارے گروہ جو ہیں یہ اپنے ہتھیار ڈالیں۔ تو مذاکرات تو شروع ہونے چاہیے، اور اسے مذاکرات تو دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہوتے ہی رہے ہیں وقتاً فوقتاً، جنگ بھی رہتی اور مذاکرات یعنی یہاں پہ بہت سے لوگوں نے، بڑے صحافی جو جن کے اچھے تعلقات تھے طالبان کے ساتھ، جو وہاں پہ جاتے تھے ان کے علاقوں میں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے آرٹیکلز میں بالکل صاف صاف لکھا ہے کہ طالبان پاکستانی فوجوں کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو موقع دیتے تھے کہ وہ جنگ نہ کریں، لیکن ان کو مجبوری تھی کہ پاکستانی فوجوں کو مجبوری یہ تھی کہ امریکہ سے حکم مل رہا تھا۔ امریکہ اور نیٹو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو طالبان ہیں جو ان کی فوجوں پہ افغانستان میں حملہ کر رہے ہیں وہ پناہ لینے کے لیے پاکستان آتے ہیں، اس لیے پاکستان میں ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ تو جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو آل پارٹی کانفرنس میں جو بات طے ہوئی تھی، پاکستان حکومت کو چاہیے کہ اس کے مذاکرات شروع کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ آج کے اور مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی اسی صورت میں ہوگی کہ جب کہ امریکی فوجیں نیٹو فوجیں جو ہے اس خطے سے مکمل طور پہ نہیں نکلیں گی۔ فکر کی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی، حالانکہ جان کیری صاحب ابھی سیریا کے معاملے میں بہت بہت مصروف ہیں، لیکن وہ آئے دن یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ افغانستان سے ہم کو مکمل طور پہ نہیں نکلنا، اس کا مطلب یہ کہ ہم وی آر دیئر فار اے لانگ ہال، پتہ نہیں کتنے سال۔ اگر وہ امریکہ وہاں پہ موجود رہا تو مجھے جو ہے یہ امید نہیں ہے کہ حالات پاکستان کے ٹھیک ہو سکیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو پاکستان کو شدید نقصان ہو رہا ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں، جیسا کہ آپ کی شروع کی رپورٹ میں بھی کہا گیا۔ اب کراچی میں مثلا آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ ہو گیا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے جو متحدہ قومی موومنٹ کے جو گروہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب طالبان کی اور طالبان کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اسلامک ازبکستان کا ایک اسلامک موومنٹ جو ہے وہ بھی طالبان کے ساتھ مل کے اس کے ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ تو اب یہ بہت زیادہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے कि जब तक के इसको सही तरह से बुनियादी तौर पर हल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी शुरू हुई वो इस वजह से शुरू हुई कि अमरीका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया उस 2001 से पहले ये इस किस्म की जो दहशतगर्दी थी और ये जो खुदकश हमले थे उस तरह से उसका उसका कुछ नतीजा पाकिस्तान ने अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में शामिल मुकम्मल तौर पर शामिल होने का पर राजी हो गए। उस पर सारे मसले मसाले उसी से शुरू हुए हैं। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि मुज़ाकरात जारी रखें, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि देखिए अब ये कमज़ोरी पाकिस्तान हुकूमत की सबसे बड़ी ये है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो सबसे पहले उन्होंने कहना शुरू किया कि हमें ड्रोन हमले बंद करने हैं और ड्रोन हमले जो हैं वो गैर कानूनी हैं वगैरह वगैरह। अब देखिए अब उसका कोई जिक्र भी नहीं हो रहा। शुरू शुरू में लोगों को एक तरह का नारेबाजी हो रही थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी अब उसका कोई ड्रोन हमले बाकायदा हो रहे हैं, बाकायदा पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं, उसका कोई हल नहीं निकला। तो ये इस तरह से तो कभी तो ये तो सब लोगों को बात समझ में आती है कि असल वजह इसकी ये जो हम पाकिस्तान जो मुसीबत में पड़ा उसकी असल वजह क्या है। असल वजह जो है ये अमेरिका और नेटो और ये जो कहते हैं मोसाद इनके जो कारकर्दगी और अमेरिका के जो जासूस बैठे हुए हैं पाकिस्तान में वो जो एकदम जो मुसीबत फैला रहे हैं।
जी बहुत शुक्रिया आपका। फौजिया शाह साहिबा, जैसा कि तालिबान ने कहा है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती तो पहले हमारे कैदियों को रिहा करे और हमारे इलाकों से यानी कबाली इलाकों से फ़ौज को वापस बुलाए, और फ़ौज वापस बुलाने का ये वो मुतालबा है जिससे फ़ौज ने जनरल कियानी ने मुस्तरद कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि कैसे कोई कॉमन ग्राउंड आएगा या वजूद में आएगा, कैसे उसको फराहम किया जाए कि जिसकी बुनियाद पर जहाँ पर जाके दोनों मिल सकें और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकें?
देखिए सबसे पहले जिस तरह पहले अभी बात मैं कर रही थी कि एक तो ये है कि मुज़ाकरात अगर ये कहा जाए कि किससे किया जाए, बैतुल्ला महसूद के हवाले से जो बात की जा रही है या 70 उनके ग्रुप्स की बात की जा रही है, मैं बिल्कुल अभी तक कन्विंस्ड हूँ कि मुज़ाकरात का आगाज़ करना ही पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरे फरीक की जानिब से वो ख्वाहिश दिखाई नहीं दे रही। गो उन्होंने वेलकम किया है मुज़ाकरात को, लेकिन उसके बावजूद जो मुज़ाकरात के लिए एक मतालबात रखे जा रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हुकूमत किसी तरह भी एक रहाई तक तो ठीक है, रहाई तक तो बात हो रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अफवाज के इनखला की, क्योंकि हमने पीछे जो खासा ख़ास तौर पे जो अगर हम ये स्वात की बात देखते हैं बालाकंड में देखते हैं हमने उसमें बहुत सफ़र किया है। तो मेरा ख्याल है कि किसी तरह भी ये दूसरी जो शर्त है उसको हुकूमत मानने को तैयार नहीं होगी। और जो मैंने पहले बात की थी कि मैं नहीं समझती कि जनरल कियानी साहब का जो वाज़े तौर पे पैगाम है उसके बाद मैं किसी तरह नहीं समझती कि वहाँ से अफवाज का इनखलाब मुमकिन हो सकेगा। और वो इलाके ऐसे हैं कि जिसमें मेरा ख्याल है कि अमन व अमान के लिए फ़ौज का एक नागुज़ीर करार दी जा रही है, और वहाँ अभी अगर थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर किसी जगह दिखाई देती है तो उसकी अफवाज की मौजूदगी ही की वजह से है। दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं मुज़ाकरात की, मेरा अपना ख्याल है कि जब मौजूदा हुकूमत आई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और इसके साथ साथ हम देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत आई थी, ये दोनों वो जमातें हैं कि जिनके बारे में एक ना सिर्फ तालिबान की जानिब से कुछ नरम गोशा दिखाई देता था बल्कि इन जमातों की जानिब से भी तालिबान के लिए नरम गोशा दिखाई देता था। बल्कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से तो आपको याद होगा कि तालिबान ने जब मुज़ाकरात की बात की थी तो गारंटी इनकी कही थी, तो ये एक तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो मुज़ाकरात में खासी आगे बढ़ेगी। और अभी कोशिश भी की जा रही है, जिस तरह अभी आपने पहले वज़ीर इत्तला'आत की बात की है, मैंने आपको बताया कि वज़ीर दाखला भी वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि उनकी जो पसे पर्दा जो हैं उनके मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। किन से हो चुका है ये हम वाज़े नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बिल्कुल वाज़े है कि कहीं ना कहीं रबते हो चुके हैं। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो APC मुख्तलिफ अवकात में ज़रा उसमें ताखीर का भी शिकार हुई, आपको पहले तो ठीक है इमरान ख़ान की गैर मौजूदगी की वजह से कुछ उसमें ताखीर कही जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपको बिल्कुल इल्म होगा कि बार बार जो है उसकी तारीख बदली। तो उसकी बुनियादी वजह मुझे यही दिखाई देती है कि मुज़ाकरात का एक कोई ऐसा सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था, और जब वहाँ से कुछ इस किस्म के मुस्बत इशारे मिले उसके बाद APC में जो है वो एक फ़ैसला किया गया। राबते ज़रूर हैं, मैं ये बिल्कुल इसको मानने को तैयार नहीं हूँ कि राबते नहीं हैं, राबते ज़रूर हैं, और एक अच्छी नीयत के साथ रबते हैं, लेकिन दूसरे फरीक की तरफ हम ये देखते हैं तो एक जो मज़ाकरात के लिए एक रिजिड रवैया जो है वो नहीं होता, लेकिन दूसरी जानब हमें रिजिड रवैया दिखाई देता है और साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कोशिश नहीं दिखाई देती, जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे हैं जनरल न्याजी की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह उन्हें शहीद किया गया, उनके जो साथी थे उनको शहीद किया गया, तो मेरा और उसके साथ साथ उन्होंने तस्लीम भी कर लिया कि वो कार्रवाई जो है उनकी है, तो मैं ये समझती हूँ कि उनकी जानिब से, तालिबान की जानिब से किसी किस्म का, सिर्फ एक ख्वाहिश का कि ठीक है मुज़ाकरात होने चाहिए, इसके अलावा कहीं भी कोई मुस्बत इशारा नहीं मिल रहा। हुकूमत इस वक्त यकीनन एक ऐसे इम्तहान में हम कह सकते हैं कि जो एक अच्छी नीयत से आगे बढ़ रही है, अवाम की तायद उसके साथ है, दीगर सियासी जमातों की भी तायद उनके साथ है, लेकिन वो दूसरी तरफ जो है फिर अगर वो डेड लॉक दिखाई देता है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जो अभी बात की जा रही थी कि यहाँ हालात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक आपके पड़ोस में जो अमेरिका की जो कार्रवाई हैं, जो नेटो फोर्सेस की कार्रवाई हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका का एक बहुत बढ़ता हुआ जो एक असर है, ये जब तक कम नहीं होता उस वक्त तक इसके असरात मुझे नहीं दिखाई देते कि कहीं एक बेहतरी की जानिब हम बढ़ेंगे। जब अमेरिका की बात करते हैं तो हमें साथ इसके इस्लामी ममालिक को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर जिक्र करती हूँ और शायद बहुत से लोगों को ये नागवार गुजरता है, लेकिन अमेरिका के साथ साथ जो अमेरिका बराह रास्त तो बहुत सी चीज़ें नहीं कर रहा, उसके वो सऊदी अरब को अपना साथी बना रहा है, और सऊदी अरब की जो पाकिस्तान में रसूख है मेरा ख्याल है उसे भी हमें एड्रेस करना चाहिए। और इस वक्त अगर मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो अगर सऊदीया जो अपना किरदार अदा करता है और वो अमन के लिए करता है, जो मुझे तवक्को नहीं है, अगर वो अपने अमन के लिए किरदार अदा करता है तो फिर तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अमरीका की ख्वाहिश के बग़ैर कोई मुज़ाकरात होंगे या सऊदीया की ख्वाहिश के बग़ैर होंगे, तो उसमें मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि जिसको हम कामयाबी की बात करें। सिर्फ ये है कि विशफुल थिंकिंग ज़रूर है, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कामयाब होने चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब आपके वो आइन को तस्लीम नहीं करते और वाज़े तौर पे वो कहते हैं जब आप एक उसकी रिट को मानने को तैयार नहीं, आप रियासत को तस्लीम करने को तैयार नहीं, आप उसके आइन को तस्लीम करने को तैयार नहीं, आप कम से कम ये तो बात करें ना कि आप उस आइन के ताबे हो के मुज़ाकरात करना चाहते हैं। किसी जगह भी उनकी तरफ से कोई मुस्बत इशारा नहीं मिल रहा।
बहुत शुक्रिया आपका।
अब इस सूरत में मुज़ाकरात कहाँ आगे जा सकते हैं, किस नहज पर पहुँच सकते हैं, नतीजा कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस पर यकीनन क्वेश्चन उठ रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आगा साहब। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जो अहम अफगान तालिबान लीडर अब्दुल गनी बरदर की जो रिहाई अमल में आई है, जिसकी खबर आज आई है, क्या समझते हैं कि ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि हुकूमत पाकिस्तान तालिबान के जो पाकिस्तानी तालिबान उनके साथ जो मुज़ाकराती अमल शुरू करना चाहती है उसको महमेज देने के लिए सब कुछ किया गया है?
नहीं अब्बास भाई, ये बात नहीं। देखिए, ये तो अफगान तालिबान के सिलसिले में जो एक बातचीत अफगान पीस कमेटी से चलने वाली है और जो दोहा में तकरीबन नाकाम हो गई, ये तो उस सिलसिले में है, इसका पाकिस्तानी तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे दोनों मुबस्सिर ये कह रहे थे कि अब्दुल्ला बैतुल्ला महसूद, बैतुल्ला महसूद का तो कोई वजूद ही नहीं है, जो काम जिसके जुब्त है वो हकीमुल्ला महसूद हैं, जिनके सरबराही में ये मजलिसे शुरा का इजलास हुआ था जिसमें 70 ग्रुप ने शिरकत की थी। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अभी फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि तालिबान पाकिस्तानी तालिबान के साथ जो है मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि 2014 में जब अमेरिका यहाँ से जाएगा तो उस सूरत में ये जो लोग हैं ये तो मतलब क्रिमिनल हैं और इनके ताल्लुकात जो हैं बैरूनी अकाउंट से है, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ी, पाकिस्तान की फ़ौज और अस्करी क़यादत के लिए बड़ी सूरत हाल ख़राब कर देंगे। तो फजल रहमान साहब का ये बयान आया, फिर असफ़ दराज वली खां का बयान आया। असलम दराज वली खां आपको मालूम है कि एएनपी के सरबराह हैं और सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में लेकर और कराची तक सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी दी है वो एएनपी ने दी है, उनके 800 कारकुनों को इन तालिबान ने मारा है। तो उन्होंने ये कहा कि इनके साथ मज़ाकरात का मैं बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन अगर मज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फौजी कार्रवाई नागुजीर हो जाएगी। देखिए, इस सिलसिले में पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के जो सियासी क़यादत है वो बड़ी समझदार है और समझ रही है कि सूरत हाल क्या है। वो अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी फ़ौज के बारे में भी जानते हैं और वो इन लोगों के बारे में जानते हैं जो 70 की तादाद में बैठे हैं, और वो इमरान खान के इस बयान से भी इतफाक़ करते हैं कि बेशतर इसमें जो लोग हैं वो क्रिमिनल हैं, वो कोई नजरियाती लोग नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो बातचीत का जो आगाज होने वाला है अभी हरचंद के सिर्फ पसे पर्दा बातचीत हो रही है, और इस बातचीत के मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ बहुत अच्छे नतज निकलेंगे। दरअसल लोगों को यही नहीं मालूम कि फाटा में ये तहरीक तालिबान के कितने नुमाइंदे हैं, उसमें उजबेक है, चेचेंस हैं, उसमें मुख्तलिफ लोगों के लोग हैं, लेकिन टोटल तादाद 10,000 से ज्यादा नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि जो जनरल कियानी ने जो बात की है कि हमारे अंदर काबिलियत भी है, अहलियत भी है, और हम इनका बहुत आसानी से मुकाबला कर सकते हैं, तो कुछ सोच समझ के ये बयान दिया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये 10,000 की तादाद कोई ज्यादा बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन क्योंकि वो गोरेला मूवमेंट के जरिए काम कर रहे हैं और वहां पे टेरेन जो है शुमाली वजीरिस्तान का, वो टेरेन बहुत बहुत खराब है, तो उस टेरेन की वजह से ये फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो फाटा की आबादी है वो इनके खिलाफ है, अक्सरियत जो है इनके खिलाफ है, वो पाकिस्तान से अमन की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने एपीसी में यही बातें रखी, फिर उन्होंने कहा कि ड्रोन के सिलसिले में हम सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे। आपको मालूम है सितंबर में वो जा रहे हैं जनरल असेंबली के इजलास में, हो सकता है कि साइड लाइन पे उनकी बात हो ओबामा से, या साइड लाइन पे बात हो मनमोहन सिंह से, लेकिन अगर वो वाशिंगटन जाते हैं तो ये सारी बातें जो है वो सामने आएंगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो मसला है वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि इन दहशतगर्दों की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हुई है और एक माशी और माशरत जो है वो तबाह हो गई है। ये सारी चीजें जो है सियासतदान बड़ी आसानी से इस चीज का इदराक भी रखते हैं, एहसास भी रखते हैं। चुनांचे यही वजह है कि हकीमुल्ला महसूद से मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फजल रहमान साहब के ताल्लुकात हैं। फिर समीउल्लाह के बारे में मैंने आपकी खिदमत में बताया था कि मौलाना समीउल हक के ताल्लुकात उमर मुल्ला उमर से भी हैं, और मुल्ला उमर उनके शागिर्द भी रह चुके हैं, और अखोड़ा खटक में जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी ज्यादा तादाद तो तालिबान में है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हकीमुल्ला महसूद जो इस वक्त सरबराह है इन पूरे तहके तालिबान में, वो इन लोगों से बहुत मुख्तलिफ है, वो क्रिमिनल नहीं है, और वो खुद भी चाहता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रेशर है फाटा के अवाम का, तबाह हो गए हैं वहाँ पे, स्कूल तबाह हो गए हैं, कॉलेज तबाह हो गए हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं है इकोनॉमिकली, दे आर टोटली रियूंड। सो डू यू थिंक दे विल रिमेन रियूंड, या उनके पास कोई तालीम नहीं होगा, सेहत के शोबे नाकाम हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ से जो जो अमन की ख्वाहिश है वो है, और जो छोटी मोटी जो बातें होती हैं, होता ये है कि जंग की सूरत में लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि बड़े मतलब मतालबात पेश किए जाएं, लेकिन जब गुफ्तगु शुरू होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर नीचे उतरते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान अस्करी क्यादात बिल्कुल एक पेज पे है, कोई इस किस्म की कोई अभाम नहीं है। यही वजह है कि जनरल कियानी ने बार बार कल ही उन्होंने दोबारा ये बात जो दोहराई कि हम अमन को एक और मौका देना चाहते हैं। हालांकि जनरल रियाजी शहीद हुए, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, हमारे लाइंस नायक शहीद हुए, और उसकी वजह से बड़ा सदमा पहुंचा है इस पूरे प्रोसेस को जो होने वाला था, तो इस प्रोसेस को कौन रोक रहा है? मेरा ख्याल है कि जो मामूली सा भी सियासत का तालिब इल्म है वो जानता है कि इसके पीछे ये सारे आलमी साम्राज्य काम कर रहा है, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहा है। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की मेच्योरिटी है कि इतने बड़े वाकये के बाद भी उन्होंने रिएक्शन नहीं शो किया, रद्द अमल की सियासत नहीं शो की, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, लेट पीस शुड गेट अनदर चांस। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चांस मिल जाता है अच्छी बात है, वरना जिस तरीके से असफंदार वली खान साहब ने कहा है कि अगर ये मजाकरात नाकाम होते हैं और उसको कोशिश की गई नाकाम बनाने के लिए, तो फौजी एक्शन जो है वो नागजीर हो जाएगा। और आपको मालूम है कि मालाकट एजेंसी से खुद मतलब पेशावर के हाईकोर्ट ने जो फौजी इनकलाब हुआ था उसको रोक दिया, और ये बड़ी हिमाकत हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कि वहां से वो मालाकंड से फौजों को वापस बुला रही थी, और दे वांटेड टू गिव ए मैसेज के लुक के वी आर फॉर यू एंड वी वांट टू मेंटेन पीस। इनको मालूम ही नहीं है, खुद इनका सरबराह इमरान खान कह रहा है कि भाई इसमें अक्सर क्रिमिनल्स हैं, तो हाउ यू कैन हैव इट पैरेलल्स विद द क्रिमिनल। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासी क्यादत अस्करी क्यादत बहुत मेच्योर है, समझ रही है कि क्या कुछ होने वाला है और आइंदा क्या कुछ होगा, तो उसका पेश खेमा यही है कि इनको बुलाया जाए मजाकरात के टेबल पे। फाटा के अवाम के भी प्रेशर है, क्योंकि वो जिस तरीके से तबाही से दो चार हुए हैं, तो ये सब मिलकर मैं समझता हूँ कि ये बैठेंगे, कुछ लोग के तहत बात होगी, और अगर नहीं होगी तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी विल मूव। पाकिस्तान आर्मी पहले ही से वह मौजूद है, खुद अमेरिकन कहते हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी को जाना चाहिए, और फिर उस सूरत में तो एक फॉरन एजेंडा होगा, लेकिन इस दफा जो एजेंडा होगा नॉर्थ वजीरिस्तान में जाने का वो खालिस्तान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की
सियासत का होगा। बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिद्दीकी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि अभी फौजिया शाही साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि तालिबान जब آئین پاکستان کو نہیں مانتے، موجودہ نظام و سسٹم کو نہیں مانتے، عدلیہ کا احترام نہیں کرتے، تو ان کا فریق کون ہوگا، وہ کس سے مذاکرات کریں گے؟
دیکھیے، یہ ہم کو وجہ سوچنی چاہیے کہ یہ کیوں نہیں آئین کا احترام کرتے اور کیوں نہیں یہ عدلیہ کا کرتے ہیں. طالبان کے میں موومنٹ میں بہت ساری کمیاں ہیں، خرابیاں ہیں، لیکن اگر آپ ان کا بنیادی اصول دیکھیں تو وہ ان کو اسلامی حکومت چاہیے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے، میں ان کی طرف سے نہیں بولا، مجھے کوئی ان سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، کہ میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک جمہوری اسلامی ملک کا نام دیا گیا ہے اور وہاں پہ اسلامی قانون نافذ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوں کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ صحیح معنوں پہ اسلامی قانون کے اوپر نہیں بنا اور اس لیے وہ اس کو احترام نہیں کرتے. لیکن یہ جیسے کہ ابھی آغا صاحب نے کہا، مجھے اس سے اتفاق ہے کہ ایک دفعہ مذاکرات شروع ہو جائیں تو جو بڑی بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں پھر وہ کم ہو جاتی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کو آپس میں بیٹھ کے اپنے ڈیمانڈز کو لو کرنا پڑے گا اور وہ جو کامن گراؤنڈ ہے وہ تلاش کرنی ہوگی. تو ایک بات، اس کو ابھی ہمیں اتنا زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے کہ طالبان جو ہیں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. وہ تو بالکل جو ایکسٹریم ریکوائرمنٹس ہوں گے وہ لے کے چل رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اتنے سارے گروہ جو ہیں، اتنے گروپ ہیں، ان کا جو صحیح ریپرزنٹیٹیو وہ کون ہوگا؟ کہ مطلب یہ کہ اگر کسی قسم کا کوئی اتفاق ہوا، اگریمنٹ ہوا، تو اس کو جس کا کہتے ہیں امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا، وہ کیا اتنے گروہ ہیں ان کو ایک ساتھ کون لے کے آئے گا؟ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالانکہ مجھے پورا اس کی تفصیل نہیں معلوم ہے، لیکن جو ابھی جنرل نیازیو وغیرہ کا جو قتل ہوا اس میں ان کے جو طالبان کے کون سے گروہ لوگوں نے کیا، جو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ بالکل یعنی ان کا جو ہے صرف کام ہی یہی ہے کہ دہشت پھیلانا اور اس قسم کا کام. تو اس میں یہ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، سیاست و گروہوں میں اس مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے گروہ ایسے ہیں کہ جو امریکہ نے بنائے ہیں اور جن کا کام صرف یہ ہے کہ آپس میں نااتفاقی پھیلانا. بہرحال یہ جو چیز شروع ہوئی ہے مذاکرات کی، میں سمجھتا ہوں یہ جاری رکھنی چاہیے حکومت پاکستان کو، اور مجھے پوری امید یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جب امریکہ اور نیٹو کے اوپر یہ زور ڈالیں گے کہ جب اگلے سال جو وہاں سے ان کی فوجوں نے جانا ہے تو وہ مکمل طور پہ اس علاقے سے چلے جائیں تاکہ جو امان قائم ہو سکے. کیونکہ مجھے کوئی شک نہیں ہے جو پاکستان کی فوجیں جو جنگ کر رہی ہیں فاٹا وغیرہ میں، صرف امریکہ کے کہنے کی وجہ سے. اور ظاہر ہے جب ایک دفعہ اس چیزیں شروع ہوتی ہیں تو دہشت گرد پیدا ہی صرف اسی وجہ سے ہوئے ہیں اور تعداد میں بڑھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی جا رہی ہے.
بہت شکریہ آپ کا.
مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی فوج میں اتنی طاقت ہے کہ ان لوگوں کو ختم کر سکے، لیکن کیوں مسلمان ایک دوسرے کو ماریں؟ اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جنرل کیانی نے یہ سوچا ہوگا کہ نہیں، ہم ان کے خلاف ابھی ایکشن نہیں لیں گے اور ابھی موقع دیں گے کہ ہم جو ہیں مذاکرات کے طور پہ اپنے جو بھی ہمارے جو اختلافات ہیں ان کو کم کریں. تو یہ اس کو ہر یعنی شروع سے ہی میں نے عرض کیا تھا، بہت دو سالوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میز کے سامنے کے ارد گرد بیٹھ گئی
بہت شکریہ آپ کا.
مجھے یقین ہے کہ طالبان
جی بہت شکریہ. آغا صاحب، ہمارے پاس دو منٹ کا وقت بچا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ تینوں میں بزرگ ہیں تو حسن ختم آپ ہی سے کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ امریکہ، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ شمالی وزیرستان میں حملہ یا کارروائی کرنے کے لیے پاکستانی فوج حکومت پر ایک عرصے سے دباؤ ڈالا، وہ چاہتا ہے کہ حملہ ہو ہی جائے شمالی وزیرستان پر، لیکن فوج نے ابھی تک ایسا نہیں کیا. اب جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو کیا امریکہ کو یہ بات اچھی لگے گی؟
میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، ثناء اللہ نیازی صاحب کا جو شہادت ہوئی ہے، اور تو یہ باقاعدہ وہ گروپ ہے کہ جو امریکہ اور ہندوستان کے کہنے پہ یہ سارے کام کر رہا ہے اور پیسے لے کے کام کر رہا ہے. تو چنانچہ ان کا پوری کوشش یہ تھی کہ امن کے سلسلے میں جو اے پی سی نے فیصلہ کیا ہے اس کو ناکام بنا دیا جائے، اور یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا. اور آپ کو میرا خیال ہے کہ بہت سن کے حیرت ہوگی کہ اس حملے میں ملا صوفی بھی شامل ہے کہ جو افغان بارڈر کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں. तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए ये जो सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है बहुत गहराई से समझ रही है कि सूरत हाल क्या पैदा होने वाली है। चुनाचे वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की फौज जो है वो शुमाली वजीरिस्तान में जाए और फंस जाए वहां पर जाने के बाद, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया वहां का टेरेन बड़ा खराब है, हालांकि वहां के जो आवाम है फाटक है वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत को सपोर्ट करते हैं। अब तो यही वजह है कि नवाज शरीफ मुसलसल ये कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात होने चाहिए। और चौधरी निसार से अभी हाल ही में हमारे एक सहाफ़ी ने बात की थी, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पसे पर्दा शुरू हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि चंद दिन की बात है, लेकिन अगर सूरत हाल जो है उसमें कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं हुई तो ये मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे और बैठने के बाद इनका वही ग्रुप होगा जो हकीमुल्ला महसूद का, जो बार बार मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि हकीमुल्ला महसूद ही उनका क़यादत है और जो मजलिस शूरा का इजलास हुआ जिसमें 70 ग्रुप शामिल थे वही उनकी उसको अपना कायद समझते हैं, बाकी और कोई भी नहीं है। और इस सिलसिले में मुल्ला उमर का भी बड़ा बहुत रोल है जो वो अदा करेंगे और मौलाना समीउल हक पहले ही कह चुके हैं कि मैं इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने को तैयार हूं। तो हमें इस सिलसिले में ये महसूस करना चाहिए कि ये पाकिस्तान के हक में है, ये तालिबान के हक में है कि अगर अमन कायम हो जाता है तो फाटा के अंदर जो गैर मामूली माशी सरगर्मियां शुरू होंगी, क्योंकि बजट में बहुत बड़ा पैसा जो है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। यकीनी तौर पर किसी भी मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात, बातचीत और सियासी तरीका है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।